समझ के आंखा और कान खोल दे प्रभु, कि तब आपकी वो वचन हम समझ सके प्रभु, आपकी वचन जीवन और आत्मा है, वो जीवन पाने के लिए हम आया है प्रभु, वो जीवन सिर्फ आपके वचन में है, वो वचन वो जीवन सिर्फ आपके आत्मा हमें दे सके प्रभु। टच अस लॉर्ड दिस इवनिंग, फिर एक बार प्रभु स्पीक टू अस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हम पहले बार पहले तिसलोनिया 5:23-23 उदाहरण के लिए मैं ये भी लेकर आया है आज, मेरे मिनिस्ट्री सेवकाई के बच्चे थे, वो बच्चे लोग बनाया था बहुत साल आगे, ज्यादातर ज्यादा बच्चे तो मर चुकी, उन लोग HIV बच्चे था, उन लोग को मालूम था मुझे ट्रेन बहुत पसंद है, इसलिए उन लोग अपने हाथ से बनाया ये और मरने के आगे भेजा मेरे लिए, अभी भी मेरे पास है। आज मैंने सोचा उदाहरण के लिए ये अच्छा है, दिखाएंगे। पढ़ लिए डॉक्टर।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और
पूरी रीति से पवित्र करे
और तुम्हारी आत्मा
तुम्हारी और, आत्मा
और प्राण और दे
प्राण और दे
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
हमारे यीशु मसीह आने का समय तो आ गई, हमको मालूम है, हम वही समस्या में है, सारे संसार ये एक एक महामारी। हम कल मैंने एक दूसरे एक पासवान की यूट्यूब में सुना, वो बहुत अच्छे पासवान है, 80 साल से उम्र है, उसने बोला मेरे जीवन में भी ऐसी एक हालत कभी भी नहीं देखा है। उसने मुझसे भी करीब 30 साल उम्र ज्यादा है, बोला 80 साल में ऐसे एक ऐसे एक अवस्था संसार में देखा ही नहीं। ये एक चिन्ह है, जरूर एक चिन्ह है, यीशु मसीह आने का वक्त आ गया है। कितने साल बाकी हमको, हम नहीं बोल रहे अगले महीना ये साल में आएगा, लेकिन उसके दूसरे आगमन हमारे बहुत पास आ गया, इसलिए आने समय में हम कैसे होना पड़ेगा, निर्दोष होना पड़ेगा। कैसे निर्दोष होना पड़ेगा, हमारे आत्मा हमारे प्राण और हमारे देह, सारे वजन में एक इंसान को तीन भाग, एक विश्वासी को तीन भाग है, ये वजन में स्पष्ट लिखा है। कैसे है, उसकी आत्मा उसकी प्राण और इसकी देह, शरीर या देह, ये तीन भाग है। ये तीनों यीशु मसीह आने समय में कैसा होना पड़ेगा,
निर्दोष
होना पड़ेगा, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लेमलेस होना पड़ेगा। इसलिए हमारे उद्धार के बारे में आज हम देखेंगे फिर एक बार, क्योंकि इसके ऊपर बहुत शंका है, बहुत सारे लोगों को शंका है, इसलिए हम उद्धार के बारे में जो अंग्रेजी में दो दिन आगे सुनाए सुना होगा, लेकिन हमारे हिंदी और नेपाली भाई और बहनियों को सुन दे तपेर को लागी हमी हेर चुकी यो हमरो उद्धार को बारे में लिखे कचा। हमारे उद्धार के बारे में लिखा है, हमारे उद्धार की तीन भाग है, एक आत्मा से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्राण से जुड़ा हुआ है, तीसरा शरीर के जुड़ा हुआ है, और ये तीनों महत्वपूर्ण है, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह आते टाइम हाँ मेरा आत्मा में उद्धार हुआ है, ये जगह छोड़ेगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये तीनों आत्मा प्राण और शरीर, यो तीन यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कैसा होना पड़ेगा, निर्दोष होना पड़ेगा। इसलिए पहले हम देखेंगे एफिसी 2:8
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
हमारे उद्धार कैसे हुआ, इधर क्या लिखा है, अनुग्रह के द्वारा है हमारे उद्धार, अवर सालवेशन, हमारे उद्धार कस्तबायो अनुग्रह के द्वारा हुआ है। वो एक दान है, परमेश्वर का दान है, किसी ने भी उसके लिए काम नहीं किया है, ये दान है। अंग्रेजी में बोलते हैं गिफ्ट है, किस उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का मुफ्त एक दान है। विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसकी काम पर विश्वास रखते हैं, वजन उसके बारे में क्या बोला है उस बातों में हम विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं उसके एक दान मिलते हैं। क्या है, हमारा उद्धार। वो कैसे होते हैं, अनुग्रह के द्वारा। अब फिलिपी 2 के बारे में चलेंगे, फिलिपी 2 के बारे और उसके बाद याकूब के 2 में चलेंगे। फिलिपी 2 के बारे में हम पढ़ लीजिए।
सो है मेरे प्यारो,
हे मेरे प्यारो,
जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य
अपने अपने उद्धार का
कार्य पूरा करते जाओ,
कार्य पूरा। इधर दूसरे एक बात लिखा है, कैसे है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अंग्रेजी में बोलते वर्क आउट योर सालवेशन विथ फियर और ट्रम्बलिंग। अरे इधर तो उद्धार के काम के बारे में लिखा है, पहले एफिसियों 2:8 में लिखा है उद्धार तो एक मुफ्त दान है। अब सोचना पड़ेगा उद्धार मुफ्त है या उद्धार के लिए काम करना पड़ेगा, ये है शंका। क्योंकि हम सिर्फ एक वचन देखेगा तो हमको मालूम नहीं पड़ता ये उद्धार क्या है। पहले वचन में लिखा है वो सत्य है, एफिसियों 2:8 में लिखा है अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, वो एक कैसे है, परमेश्वर से एक दान है। इधर लिखा है डर और कांपते से अपने अपने उद्धार को कार्य पूरा करो, पूरा करते जाओ, हर दिन करते जाओ, वर्कआउट योर सालवेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग करते जाओ। इधर कैसे लिखा है, ये उद्धार का काम भी है, काम से भी उद्धार होते हैं। याकूब के 2:14 और 2:17 में उसके बारे फिर याकूब लिखा है, अगम वक्ता याकूब ने लिखा है, James 2:14 and 17, याकूब 2:14।
है मेरे भाइयों, यदि कोई हमें यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ,
क्या लाभ है,
क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है।
हाँ, ऐसा उद्धार उसका उद्धार कर सकता है, क्योंकि उसके विश्वास में क्या नहीं है,
काम नहीं,
काम अभी काम के बारे में लिखा है, उद्धार के साथ जोड़ा हुआ है, उद्धार काम के साथ विश्वास जोड़ा हुआ है। पहले उधर लिखा है उद्धार कैसे है, मुफ्त है, इधर काम से जोड़ा हुआ है। और उधर क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है,
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है,
मरा हुआ है, उद्धार तो नहीं हुआ है, मरा हुआ है। इधर क्या है, उद्धार विश्वास के काम से जुड़ा हुआ है। अब 18 देख लीजिए, रोमियो 8:18 ने 8:14 भी लिख दिए, रोमी 8:14।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं,
24
आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है।
हाँ, हमारा उद्धार कैसे हुआ है,
आशा के द्वारा,
अनुग्रह से या विश्वास के काम से या आशा से, वह आशा भी लेकर आया इधर। हमारा उद्धार कैसे, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उसकी साथ साथ और कंफ्यूजन के लिए पॉल क्या बोल रहे हैं, 1 कुरिन्थियर 3:15 में, और इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया अभी, 1 कुरिन्थियर 3:15।
और यदि किसी का काम जल जाएगा,
जल जाएगा, अब विश्वास तो के काम, हाँ वो काम तो जल जाएगा,
तो हानि उठाएगा,
हानि उठाएगा,
पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते,
आप तो कैसे जलते जलते, अब आग से भी उद्धार होते, अनुग्रह से, विश्वास के काम से आशा से आग से। हम सोचेगा वो आग वो दिन की बात है, वो सच है, लेकिन अभी भी होते हैं, अभी भी होते हैं। अगर अभी आग हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमें मालूम नहीं पड़ता हमारा विश्वास का काम असल है या नहीं। उसका प्रतीक रूप में है जब 16 साल उसने फिलिस्तीनियों के देश में उसका काम पूरा एक दिन में परमेश्वर जला दिया, क्योंकि उसका उद्धार हो सकते, अगर नहीं जला तो वो अंधकार में जाते था। दाऊद ने एक दिन में जला दिया उसके सारे काम, उसकी बाद विश्वास के काम उसके जीवन में शुरू हो गया। दाऊद का सारे काम जला दिया परमेश्वर, हमारे काम भी जला देते परमेश्वर, क्योंकि हम बोल पूछते हैं प्रभु हम उद्धार में आगे बढ़ते नहीं, प्रभु बोले देखना है जला देते हम, क्यों बोला इतने साल के काम परमेश्वर ने नहीं माना, अविश्वास का काम शुरू होते हैं। उसके लिए भी तो हिम्मत होना पड़ेगा परमेश्वर के लोग प्रार्थना, क्योंकि ये क्या है दूसरे आगमन के समय हमारे आत्मा हमारे प्राण और हमारे देह शरीर कैसे होना पड़ेगा परमेश्वर के आगे, निर्दोष होना पड़ेगा। अब शुरू में चलेंगे उत्पत्ति के 2:7, कैसा शुरू हो गया परमेश्वर की सृष्टि। मनुष्य की सृष्टि अलग था, बाकी सारे प्राणी का सृष्टि अलग था, बाकी सारे प्राणी का Genesis 2:7 प्राणी का सृष्टि परमेश्वर मुख से बुला सब प्राणी सृष्टि सब उत्पन्न हो गया, लेकिन मनुष्य का अलग था। पढ़ लीजिए,
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा।
वो तो सारे बाकी सृष्टि के साथ तुलना करते वो सब एक ही है, वो जानवर जो है चिड़िया है मछली है उन लोग सब वो यही है, मिट्टी से है, सब मरते टाइम में वो भी वैसे हो जाता, लेकिन अलग क्या है,
और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया।
जीवन का श्वास फूंक दिया, वो है हमारे फर्क। जब परमेश्वर ने वैसे था, जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया क्या हो गया, मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया, क्या हो गया, उसका आत्मा जीवित हो गया। बाकी प्राणी में क्या है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, एक प्राण है एक शरीर है, लेकिन यह प्राण में परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं, इसलिए इसके लिए उद्धार भी नहीं है, उद्धार भी नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी छाया में रचाया, उत्पत्ति के 1 लिखा है उसके अपने स्वभाव में छाया में, वो कहां से आते हैं, क्योंकि उसके आत्मा उसने क्या किया, उसने हाउ डू यू से इन हिंदी ही नो यू डोंट हैव टू गो देयर 2:7 ही ब्रीथ इन टू इट, हाउ डू यू से
श्वास फूंक दिया,
श्वास फूंक दिया, वो श्वास से पवित्र आत्मा, हिब्रू में रुआ बोलते, रुआ के अर्थ क्या है, श्वास है, परमेश्वर की आत्मा आ गया और मनुष्य के प्राण में क्या आ गया, परमेश्वर की आत्मा से सुनते हैं अभी, और परमेश्वर को स्वभाव है मनुष्य में। जब पाप किया, मनुष्य ने पाप किया, पाप हम लोग सोचते हैं पाप के अर्थ ही अलग है वचन में, पाप ग्रीक एक शब्द है, ग्रीक भाषा में एक शब्द है हमार्शिया बोलते, उसके अर्थ क्या है, परमेश्वर ने एक व्हाट डू यू से फॉर ए स्टैंडर्ड और ए मार्क, यीशु है परमेश्वर का वो स्टैंडर्ड बोलते। जब परमेश्वर जब मनुष्य ने पाप किया उधर से मनुष्य गिरा, वो है पाप, लक्ष्य विल बी लाइक एम, ओके दी स्टैंडर्ड, देखिए गॉड हैज अ स्टैंडर्ड, मानक, ओके मानक आई एम नॉट श्योर, ओके वो एक ने परमेश्वर का स्टैंडर्ड ही है, तो क्या होते पाप से मनुष्य गिर गया,
मापदंड
मानदंड मापदंड है ना, वो है यीशु है, पाप से क्या हो गया मनुष्य उधर से गिर गया। जब गिरते टाइम में ये क्या आप ये सोच लो, ये अब खाली हो गया, आत्मा चली गई, अब मनुष्य क्या है सिर्फ प्राण और शरीर है, लेकिन प्राण में परमेश्वर का छाया है, शरीर में भी वो प्राण का शक्ति अभी भी थोड़ा बाकी है। हमें मालूम है एक छोटा पेड़ का एक तोड़कर, एक ब्रांच तोड़कर छोड़ दो, एक दो दिन में वो सूख जाते हैं, लेकिन एक बड़ा पेड़ का काटकर छोड़ दो, बहुत दिन तक वो हरियाए होते, जल्दी नहीं मरते। पहले लोग परमेश्वर का वो प्राण आत्मा उतने ज्यादा था उन लोगों के जीवन में, जब पाप में गिरा फिर भी इसकी असर था, इसलिए इन लोग 600, 700, 900 साल तक जिया। लेकिन जब नोआ के समय आ गया, परमेश्वर बोला इसकी बात कम कर देगा, उसकी बात कम कर देगा, उसकी बात जो जो 120 से गया वो परमेश्वर की लोग था, अब्राहम, आइसक, याकूब, उन लोग परमेश्वर के साथ चलने के कारण 120 से ज्यादा गया। लेकिन ये है, अभी आत्मा तो बंद है, इधर तो अंधकार आ गया, इधर प्राण है और शरीर है, इधर से शुरू होते समस्या। अब परमेश्वर ने क्या किया, जब आदम और हवा को वो तो बगीचा से अभी निकालना पड़ेगा, कारण क्या है, दूसरा एक वृक्ष भी है, वो जीवन का वृक्ष है, अगर वो व्यक्ति लोग दो जीवन के वृक्ष खाएगा तो पापी भी है और पापी भी है और अनंत जीवन भी पाएगा, उन के लिए उद्धार नहीं होगा, सबको कहां लेकर छोड़ना पड़ेगा, नरक में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर वो बगीचा, आदन के बगीचा से इन लोगों को निकाला। और परमेश्वर ने क्या किया, हम व्हाट डू से फॉर टेम्पररी, स्थाई, अस्थाई, अस्थाई और एक टेम्पररी एक सॉल्यूशन, अस्थाई एक सॉल्यूशन था, वो क्या किया, जानवर के रक्त, क्योंकि जीवन कहां है, रक्त में है, जानवर के रक्त दिया। हम देखेंगे वो हिब्रायर के 10:1-4, वो पहले बगीचा से शुरू हो गया, वो 10 हिब्रायर 10:1-4,
क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं,
असली स्वरूप नहीं,
इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती।
पास आने वालों को कभी भी सिद्ध नहीं किया, कभी भी, इसलिए हर साल फिर करना पड़ा, कारण क्या है, जानवर के रक्त किसी को भी सिद्ध नहीं किया, और
नहीं तो उनका चढ़ावा चढ़ाना बंद क्यों न होता, हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता।
विवेक पापी नहीं ठहरना था, लेकिन विवेक तो पापी ठहरते, कारण जानवर के रगत से किसको भी सिद्ध नहीं ठहरते, और उसकी बात,
परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे,
पापों को दूर नहीं कर सकते पापों को, इसलिए एक अस्थाई प्लान था परमेश्वर का, एक तरीका था, क्योंकि बकरी के रक्त क्या नहीं करते, लोगों के पाप से परमेश्वर दूर नहीं करते और क्या नहीं, सिद्ध नहीं करते, और उस परमेश्वर का तरीका उधर लिखा है 9 में, चले हिब्रायर के 9:13-14,
क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो,
जीवते परमेश्वर को सेवा करो। परमेश्वर का एक अस्थाई था वो जानवर के रक्त, और परमानेंट क्या है, स्थाई, ना स्थाई तरीका क्या था, एक दिन यीशु आएगा और यीशु आत्मा द्वारा अपने लहू, और क्या होगा, जो जो वो मानेगा उसका व्हाट इज फॉर कॉन्शियंस देयर, विवेक शुद्ध हो जाते। अब क्या हो गया, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह उसका काम शुरू करते। जब ये आया, हमने पहले वो सब देखा है, और जब उसने मृत्यु से जी उठा, अब यूहन्ना के 20:19 से पढ़ेंगे, जॉन 20 19 से पढ़ेंगे।
उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ।
और उसने यह कहकर
उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो।
उसने क्या किया? उन पर जैसे पहले आदम से परमेश्वर किया था, और अब क्या हो गया? परमेश्वर इंसान के आत्मा जो जिसके ऊपर आया आत्मा फिर जोड़ा। अब दिमाग के नहीं, आत्मा के बत्ती जलना शुरू हो गया। आत्मा के बत्ती, अभी आत्मा बातचीत कर सकते और प्राण सुन सकते। ये याद रखना पड़ेगा। सो पहले जो हम एफिसियों 2:8 से पढ़ा, अनुग्रह से हमारा उद्धार होते हैं, वो क्या है? आत्मा का उद्धार है, वो मुफ्त है, किसी ने भी काम से वो नहीं मिल सकते। वो क्या है? आत्मा के उद्धार है। आत्मा को फिर उद्धार मिल गया, आत्मा अब प्राण और शरीर के साथ जोड़ा हुआ है, और उसकी बात क्या होते हैं? प्राण के उद्धार के काम शुरू होते हैं। इधर है कलीसिया, सब भूल जाते हैं, उद्धार तो मिल गया अब तो ठीक है प्रभु, नहीं अभी उद्धार का काम अभी शुरू होते हैं। आत्मा को उद्धार मिल गया, अब प्राण का उद्धार शुरू होना पड़ेगा, नहीं तो तुम उद्धार में आगे नहीं बढ़ सकते। जब यीशु मसीह आते टाइम में अगर तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर निर्दोष नहीं है, कि तुम दंड का योग्य है, उद्धार का योग्य नहीं, दंड का योग्य है, सबका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कलीसिया का काम क्या है? जो जो लोग उद्धार में आया, जिसकी आत्मा उद्धार मिला, अभी प्राण का उद्धार शुरू होते। वो उद्धार हम कैसे? डर से और कामते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत क्लेश है। कारण क्या है? जब शरीर संसार में जाते और प्राण भी संसार में जाते, इसलिए डर होना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार में पूरा कैसा फैला हुआ है, सिद्धांत कैसे फूला है, आत्मा के विरुद्ध है। हर सिद्धांत आत्मा के विरुद्ध है। परमेश्वर का आत्मा के सिद्धांत के नाम है हमारे लिए परमेश्वर के राज्य। राज्य एक सिद्धांत है, राज्य में एक सिद्धांत है, वो यीशु के सिद्धांत है। ये संसार में सारे सिद्धांत उसकी विरुद्ध है, वो सिद्धांतों से पर प्राण को बचाना है। अगर नहीं बचाएगा तो उद्धार के यीशु मसीह आते टाइम में कलीसिया नहीं जाएगा, इधर ही छोड़ेगा। कारण अपने प्राण और अपना शरीर निर्दोष नहीं था। ये है उद्धार के काम। ये काम विश्वासी जब विश्वासी, हमको मालूम है पेंतिकोस का दिन में पत्रोस ने अंतिम वो भाषण में अंतिम वचन ये था, ये दुष्ट समाज से अलग हो। जो जो वो माना उन लोग को बपतिस्मा दिया, और उसकी बाद वो दिन से उन लोग सिद्धांत के शिक्षा शुरू हो गया। उन लोग ये संसार से अलग होते, संसार बोलेगा तो सिद्धांत के बारे में बाद में हम देखेंगे। नाउ अब क्या हो रहे हैं? ये प्राण में क्या है? पहले हमारा मन है, चिंता सब होते वो प्राण में है। अगर जो अविश्वासी है जिसकी आत्मा नहीं है, आत्मा में जन्म नहीं हुआ है, प्राण तो है, प्राण में अच्छे से चिंता कर सकते। इधर चिंता है और इच्छा है और भावना है, इमोशंस, भावना, ये सब प्राण में है। ये सब आत्मा के नियंत्रण में लेकर आना पड़ेगा, वो आसान नहीं है। उसके लिए हर दिन हमें कैसे है, व्हाट यू से फॉर दैट फियर एंड ट्रेम्बलिंग, आई हैव टू राइट इट डाउन। डर और कामते हुए काम करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं तो क्या हो गया, ये संसार की ओर चलेंगे। अगर ये दोनों इधर मिलेगा तो शरीर भी उसके साथ चलेंगे, अगर ये दोनों चलेगा तो इन लोग संसार में चलेगा, आत्मा नहीं चलेगा, आत्मा नहीं चलेगा। देख लो इंजन तो इस साइड पर है, इधर जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जा सकते। आत्मा जो आत्मा चलाते हैं वो ही है परमेश्वर का पुत्र। अगर प्राण चलेगा तो परमेश्वर का पुत्र नहीं, संसार के पुत्र हो जाते, संसार के पुत्र हो जाते। आत्मा में जन्मा हुआ है लेकिन संसार में हमारा व्हाट यू से हमारे गवाही क्या है, ये संसार का पुत्र है। लेकिन आत्मा चलेगा तो संसार हमें तिरस्कार करेगा, लेकिन बोलेगा इन लोग कौन है, आत्मा पर के पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र। उधर से शुरू होता है। इसलिए विश्वास किसके लिए है, विश्वास प्राण के उद्धार के लिए, प्राण के उद्धार के लिए विश्वास की काम। और आशा क्या है, आशा एक दिन शरीर का भी उद्धार मिल जाएगा, नया शरीर, महिमित शरीर मिल जाएगा। वो कहां से आता है, विश्वास के साथ जोड़ा हुआ है। अगर विश्वास से आगे आगे बढ़ते समय हमारे शरीर का महिमा का उम्मीद भी बढ़ते बढ़ते जाते, वो असल होना पड़ेगा। क्योंकि कैसे होगा, जैसे हमारे मन का परिवर्तन होते, इसलिए रोमिया का 2:12 में लिखा है, पहले क्या करना, एक जीवित बलिदान के रूप में अपने शरीर को समर्पण करो, और उसकी बात कैसे संसार के ओर, पढ़ लीजिए 2:12।
इसलिए मुख्य वचन 2 है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक
सेवा। पहले है। क्या करना, इसको कुछ नहीं करना, वही इससे रख दे, बलिदान के रूप में वेदी में रख देना, पहले काम मत करना, काम मत करना। बहुत क्या होते विश्वासी लोग, पहले काम के लिए निकलते, काम मत करना, बलिदान के रूप में उठ चढ़ा देना और चुपचाप बैठना, और मन का परिवर्तन होना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, प्राण के काम करेंगे, प्राण के काम करने से परमेश्वर के आगे किसी को भी परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारे काम से मैं खुश है, नहीं बोलेगा। विश्वास के काम से ही परमेश्वर खुश होते हैं। हेब्रायर के 11:6 में जाने जरूरत नहीं, क्या लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास कहाँ से आता है, सुनाई, सुनाई कहाँ से आते हैं, इधर से सुनाई आत्मा से आते हैं, आत्मा से। और सुनाई कहाँ से, विश्वास कहां से, सुनाए, और सुनाए कहां से, परमेश्वर की वचन से। ये प्राण को, वो चिंता है ना, प्राण को परमेश्वर के वचन से भरना है, संसार के सिद्धांतों से नहीं। संसार के सिद्धांत एक 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 निकाल कर क्या रखना, परमेश्वर का वचन के सिद्धांत रखना। और जब आत्मा बोलते टाइम में सुन सकते, तो प्राण को मालूम है ये आत्मा बोल रहे, कारण क्या है, आत्मा का वचन और वो प्राण में परमेश्वर का वचन है, वो दोनों मिलते हैं। सारे संसार का सबसे कमजोरी बात क्या है, वजन मालूम नहीं, वजन नहीं मालूम नहीं। अगर वजन मालूम नहीं है तो क्या होते हैं, प्राण में सुन सकते लेकिन वो आत्मा नहीं होगा, अच्छी बात सुन सकते, दुष्ट आत्मा भी बोल सकते, हाँ कोरोना वायरस के कारण सब बंद है, तुम क्या करना, खाना बनाकर सबको खाना खिला देना, अच्छी खा में, लेकिन आत्मा तो नहीं बनाए। और जाकर पुलिस से दौर मारपीट खा कर आ गया, प्रभु मैंने अच्छे काम के लिए निकला, प्रभु बोला मैंने वो नहीं बोला तुमसे, किसने बोला, मैं तो नहीं बोला, हम ये अच्छे काम करने के लिए नहीं निकल रहे, आत्मा के काम के लिए निकल रहे। अच्छे काम हर धर्म में है, अच्छे काम के लिए निकलने वाले नहीं है हम आत्मा के काम, विश्वास के काम के लिए निकल रहे। अगर अच्छे काम, भलाई काम करने वाला है तो यीशु तो सब जगह जाकर भलाई के काम कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर उतना सामर्थ था, लेकिन उसने नहीं किया। बेतसेबा के वो पुल के उधर इतने सारे बीमारी लोग बैठा हुआ है, अंधा है, वो क्या बोलते हैं, लंगड़ा, सब बैठा हुआ है, लेकिन आत्मा ने चलाकर सिर्फ एक व्यक्ति को चंगाई देकर वो वहां से चले गए। कारण क्या है, वो विश्वास आत्मा के काम है, धर्म में वो काम नहीं है। धर्म में काम क्या है, अच्छा काम करना, वो क्या होते, प्राण के काम होते, वो आत्मा के काम नहीं। वो क्या है, अब अलग अलग धर्म में क्या होते हैं, हम धार्मिक काम करते 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 क्या है, एक दिन उद्धार मिल जाते है? नहीं, आत्मा के काम होना पड़ेगा, आत्मा चलाना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द चर्च इज वेस्टिंग देयर टाइम एंड देयर एनर्जी एंड रिसोर्सेस डूइंग गुड वर्क्स इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क्स ऑफ फेथ. वो सुनने के लिए, वो विश्वास के काम के लिए क्या होना पड़ेगा, इसीलिए रोमिया के बारे में लिखा, पहले क्या करना, अपने शरीर से करते हैं ना काम, अरे जीवित बलिदान के रूप में समर्पण करो, पहले बलिदान कर समर्पण वेदी में चढ़ा दो उधर, और उसके बाद दो में क्या लिखा है,
और इस संसार के सदृश न बनो.
संसार के सदृश न बनो. संसार बोलते क्या है, सिद्धांत के बारे में लिखा. संसार में अलग 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 सिद्धांतों है, उसके सदृश में ना बनो, परंतु
तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से.
तुम्हारे बुद्धि नया होना पड़ेगा, वो पुराना बुद्धि से नहीं चलते, कितना पड़ेगा तो भी वो पुराना बुद्धि नहीं चला सकते परमेश्वर के राज्य में. बुद्धि नया होना पड़ेगा. वो कौन नया कर सकते, परमेश्वर की आत्मा वजन द्वारा नया कर सकते आत्मा. उसकी पहले भी जो विश्वासी होने के पहले, जब आत्मा आने के, अगर एक ईसाई कलीसिया में कलीसिया जाने वाले एक व्यक्ति है तो उसके बुद्धि में भी वजन है, लेकिन वो वजन कैसे देखते हैं, संसार की आंख से देखते, आत्मा के आंख से नहीं देखते. आत्मा के आंख में देखने के लिए पहले आत्मा आना पड़ेगा. यू कैन रीड द एंटायर वर्ल्ड विद द आईज ऑफ द वर्ल्ड and come up with incredible interpretations which has got nothing to do with the spirit of God. ये है समस्या. अगर हमारा बुद्धि नया होते होते जाते क्या होगा, तुम परमेश्वर की,
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाता,
तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता. और क्या होते,
तुम परमेश्वर की भली,
परमेश्वर की भली
और भावती,
भावती
और सिद्ध इच्छा,
और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो.
हाँ, अनुभव से मालूम कर सकते. वहां से शुरू होता. ये है हमारा प्राण का उद्धार. पहली पत्रोस, फर्स्ट पीटर, पहली पत्रोस 1:9 में ये अच्छे लिखा हुआ है. पहली पत्रोस 1:9,
और अपने विश्वास का प्रतिफल,
विश्वास के प्रतिफल अर्थात
आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते रहो.
ये आत्मा नहीं, प्राण है. उधर हिंदी में गलत हो गया, इसी सालवेशन ऑफ योर सोल, प्राण की उद्धार प्राप्त कर सकते. हमारा प्राण की उद्धार हो सकते, विश्वास किसके लिए, प्राण के उद्धार के लिए. ये पाउल बोल रहे क्या है, भाई और कामते से काम कर लो. हमारा मन का परिवर्तन होना पड़ेगा. कितना परिवर्तन होना पड़ेगा देखिएगा. इसाया 55 एंड वर्स 9.
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है.
आकाश और पृथ्वी का अंतर है. कितना है, उतना अंतर है, बोल रहे परमेश्वर. मेरा गति, मेरा रास्ता, मेरा मार्ग. गति तो अलग है. गति इज एक्चुअली ए लिटिल रॉन्ग ट्रांसलेशन नो हिंदी में. गति का अर्थ थोड़ा अलग होते है, मार्ग होना पड़ेगा. परमेश्वर ने मूसा को अपने मार्ग दिखाया, और कई के ट्रांसलेशन में उधर भी गति लिखा है, मार्ग दिखाया और लोगों को क्या, अपने सामर्थ्य दिखाया. इधर क्या है, तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग, तुम्हारा सोच विचार और मेरा सोच विचार. आकाश पृथ्वी से कितना अंदर है, उतना अंदर है. वो देखते देखते हम मालूम हटते, प्रभु मेरा तो चिंता तो अलग ही है, मेरा बुद्धि का, मेरा चिंता को बदलावत होना पड़ेगा सारा दिन आपकी, क्योंकि अगर उसका, उसके विचार अलग है, उसका मार्ग भी अलग है, तो मेरा विचार भी उससे अलग है, मेरा मार्ग भी उससे अलग है. ये दोनों मिलना पड़ेगा. ये है प्राण का उद्धार. जब हम सिद्ध हो जाएगा, एक व्यक्ति अंत में जो सिद्ध हो जाएगा, क्या होते हैं, उसका विचार और उसका मार्ग परमेश्वर से मिलता है, मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, हमारे प्राण और हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, शरीर नहीं हुआ। कितना परमेश्वर के विचार और मार्ग से मिल सकते उतना हमारा उद्धार हो गया, ये है। नहीं तो क्या होते हैं, हम पाप में ही चलते, पाप में ही चलते। Proverbs 8:36 हितोपदेश ना,
नीतिवचन,
नीतिवचन, हाँ नीतिवचन, हितोपदेश नेपाली में नीतिवचन। आर के 36
8:36 परंतु जो मेरा अपराध करता है,
जो मेरा अपराध करता है, जो मेरे विरुद्ध में पाप करता है,
वह अपने ही पर उपद्रव करता है,
अपने प्राण के ऊपर वो उपद्रव करता है। वैसा अंग्रेजी में ऐसे लिखा गया, ही हु सिंस अगेंस्ट मी वुंड्स हिज ओन सोल, अपने प्राण के ऊपर उसने क्या करते हैं, अपराध करते हैं।
जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं,
मृत्यु से प्रीति रखते हैं। जब एक व्यक्ति क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्राण पर उपद्रव करते हैं। ही वुंड्स हिज ओन सोल, ये है सत्य। क्या होते हैं, हम पाप करते, हम सोचेंगे हम दूसरे के विरुद्ध में पाप किया और हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर बोला वो नहीं सत्य, तुम तुम्हारे प्राण को उपद्रव कर रहे, प्राण को उपद्रव कर रहे। ये है विश्वासी का सत्य, उसका जीवन के। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहे, बोल रहे तुम्हें संसार जाने आगे तुम्हारा वो चिंता बदलना पड़ेगा। संसार में कैसे जाना, डर से और कामती से जाना, क्योंकि ये संसार में पूरा कैसा है, अलग 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 सिद्धांत चला हुआ है, वो सिद्धांत में चलेगा तो तुम क्या कर रहे, तुम्हारे प्राण को उपद्रव कर रहे। हम देखेंगे योहना का सत्र, योहना के सत्र 16 के 18 तक, जॉन 17:16-18। एक विश्वासी कैसे,
जैसे मैं संसार का नहीं वैसे
इसे बोल रहे, जैसा मैं संसार का नहीं
वैसे ही वे भी संसार के नहीं,
वो भी संसार के भी नहीं।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र
कर, द्वारा उन्हें पवित्र कर,
तेरा वचन सत्य है।
हमें पवित्र, संसार से अलग जो होते हैं, परमेश्वर का वचन उसे पवित्र करते हैं और अलग करते हैं। कैसे, परमेश्वर के सत्य से, उसका वचन सत्य है, लेकिन संसार में जाना पड़ेगा। 18 में क्या लिखा है,
जैसे तूने जगत में मुझे भेजा
भेजा
वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा।
जैसे तुम्हें मुझे जगत में भेजा, हमने उसको जगत में कब देखा, 30 साल में, उसके आगे हमने देखा ही नहीं। जब उसने 30 साल निकला, उसका चिंता बुद्धि सब परमेश्वर का वजन के अनुसार आत्मा चला रहे। हम भी चलते टाइम में आस्ते 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 परमेश्वर क्या बोल रहा, हमारे बुद्धि, हमारे चिंता, हमारे मार्ग परमेश्वर के वजन के अनुसार आत्मा बदलेंगे। और जैसे पवित्र आत्मा यीशु को भेजा संसार में, वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा, वैसे जाएगा। जाते टाइम में कैसा होना पड़ेगा, पौल लिखा है, पौल नहीं, पत्रोस ने लिखा है, 1 पत्रोस 2:11।
हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री बन जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है,
हाँ, तुम्हारे बचे रहो। सब जगह में आत्मा आत्मा लिखा है, जो जो पंडित लोगों ने इसका ट्रांसलेट किया उन लोगों को ये तीन का फर्क मालूम नहीं है, कारण कि बाकी सब धर्म में आत्मा और प्राण एक कर दिया है। ये आत्मा प्राण और शरीर अलग है, वो सिद्धांत सिर्फ ईसाई के बीच में है, बाकी के लिए आत्मा और प्राण एक है। इसलिए कभी कभी इन लोग आत्मा लिखते है, कभी प्राण लिखते है, लेकिन 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में अलग फर्क लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। एक विश्वासी का क्या है, आत्मा है, प्राण है, शरीर है। इधर क्या लिखा है, पंडित को क्यों गलत हो गया, उन लोग भी क्या ऐसे किया, प्राण के वगैरह क्या लिखा, आत्मा लिखा। ये आत्मा के बारे नहीं है, ये संसार के अभिलाषों लोग सब किस विरुद्ध में कर रहे हैं, हमारे प्राण के विरुद्ध में, प्राण उधर जाने के लिए मन है, इसलिए बोल रहे हैं तुम कैसे एक परदेशी है। तुम संसार में जाते टाइम तुम देसी नहीं, तू परदेशी है। कारण क्या है? ये अभिलाषा, संसार में बहुत सारे सिद्धांतों, राष्ट्रीय सिद्धांतों हैं, वो परमेश्वर को राज्य के साथ नहीं मिलते। आर्थिक अवस्था के सिद्धांतों है, वो परमेश्वर के सिद्धांत के साथ नहीं मिलते। समाज के सिद्धांतों है, समाज का ऐसा होना पर वे परमेश्वर का राज्य के साथ मिलते नहीं। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक्स, यू थिंक अबाउट एनी फील्ड, सब में एक सिद्धांत, अलग 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 सिद्धांत है, वो सिद्धांत परमेश्वर का राज्य के साथ नहीं मिलते। आर्थिक सिद्धांत है, परमेश्वर का आर्थिक सिद्धांत और परमेश्वर संसार के आर्थिक सिद्धांत कभी भी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। क्या होना पड़ेगा? हमारे चिंता का बदलाव होना पड़ेगा, हमारा बुद्धि का, परमेश्वर का विचार, हमारा विचार एक होना पड़ेगा। एक होते 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 उसका मार्ग हमारा मार्ग होते, नहीं तो क्या होगा? हमारे प्राण का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए एक ही रास्ता है उद्धार के, प्राण के उद्धार के लिए, वो क्या है? विश्वास की रास्ता। हिब्रायर के 10:38-39, Hebrews 10:38-39।
और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा,
विश्वास से ही जीवित रहेगा,
और यदि वह पीछे हट जाए तो
मेरा मन
उससे प्रसन्न न होगा,
मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं हो। विश्वास से, विश्वास कहाँ से आते हैं? सुनाई कहाँ से आते हैं? परमेश्वर का वजन भी है, सुनाई भी है। यीशु आते टाइम में फरीसी लोग सब चल रहे, ऐसे चल रहे, वजन है लेकिन सुनाई नहीं है, वजन है सुनाई नहीं है। इसलिए जब आत्मा से भरे हुआ यीशु आकर बोलते हैं लेकिन उन लोग सुन नहीं सकता, नहीं सुन सका। कारण क्या है? आत्मा नहीं है। जीसस इज फिल्ड विद द स्पिरिट एंड ही स्पीकिंग टू देम, दे आर नॉट एबल टू हियर बिकॉज देयर इज नो स्पिरिट इन देम। विश्वास कहां से आते हैं? वजन से नहीं, पहला सुनाई से आता, वो है आत्मा का काम, वो बोलते। लेकिन वो आत्मा बोलते हुए सच कैसे मालूम होते? वजन है, प्राण और आत्मा जोड़कर काम कर रहे हैं। इधर आत्मा है, इधर वजन है, इन लोग दोनों मिलते हैं, दो गवाही मिलते, आत्मा का गवाही भी मिलता, प्राण का गवाही भी मिलता, दोनों संग चलते, ये शरीर भी साथ चलेंगे। शरीर भी अगर नहीं है तो क्या होगा? उस साइड पे चलेगा, पीछे चलेगा, पीछे चलेगा, ये शरीर और प्राण मिलकर आत्मा के विरुद्ध उस साइड पे चलेगा। इसलिए प्राण का उद्धार होना पड़ेगा। और 29 में क्या लिखा है? प्रसन्न होगा और
पर हम हटने वाले नहीं, कि
हटने वाले नहीं
कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले
हट सकते हैं, नाश तक हट सकते। वही है सौल राजा का, सौल राजा का भी हमें प्रतीक के रूप में एक दिन उद्धार हुआ था, आत्मा आया, नया हृदय दिया, आत्मा से भविष्यवाणी भी दिया, थोड़ी दिन अच्छे से चला, एक साल अच्छा चला, दो साल अच्छा चला, उसके बाद पीछे हटने चला। क्या हो गया? ये प्राण नहीं बदला, ये प्राण संसार के तरीका में चल रहे, आत्मा उधर नहीं, पीछे नहीं चलेगा, आत्मा आगे ही चलेगा। संसार में क्या है? नाम चाहिए। संसार में क्या चाहिए? संख्या चाहिए। उसने बोला, तुरही बजाया, संख्या आया, हाँ संसार के राजा जैसे, उसने अपने नाम के पीछे चला, आत्मा पीछे हटने लगा, वो पीछे जा रहे। अंत में उसने कहां तक चला? नाश तक चला, विश्वास से आगे नहीं। अगर एक व्यक्ति या एक कलीसिया नाम के लिए चलेगा तो आत्मा पीछे हटेगा, आत्मा उसके साथ नहीं चलेगा। अगर मेरे कलीसिया में संख्या चाहे तो आत्मा पीछे हटेगा, आत्मा वैसे नहीं चलते। आत्मा परमेश्वर के राज्य, उसकी मार्ग है, उसका चिंता है, उसकी तरीका में चलते। इसलिए हमारे मन का बदलाव होना पड़ेगा, विश्वास, और विश्वास के साथ ही प्राण के उद्धार हो सकते। और रोमिया 14:23 भी पढ़ जाएंगे, 14:23। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द faults in the translations in regional languages. That is where it happens. If you don't understand it, the spiritual meaning of it, even the trans, because most of the translators are non-Pentecostals. So they don't understand the spirit part. So they make terrible, which can take you off in a different tangent altogether, where you end up working for the salvation of your spirit instead of the salvation of your soul. It's a huge difference. Okay, देखेंगे रोमियो 14 के 23।
परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, पर जो कुछ विश्वास से
जो
नहीं,
कुछ विश्वास से नहीं, नहीं
वह पाप है।
हाँ, जो कुछ विश्वास में नहीं है क्या है? अगर मैं एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, वो विश्वास से उत्पन्न नहीं है, वो क्या है?
पाप।
वो पाप करने वाला क्या करते हैं? अपने प्राण के उपद्रव करते हैं। जो विश्वासी के प्राण के तरीका परमेश्वर एक आत्मिक एक्सरे दिखाएगा तो प्राण पूरा उपद्रव से, व्हाट इज सेफर वुंड, चोट लगी है, सारे प्राण में चोट लगी है। आप सोच लिए, एक बाल्टी पानी से भरा हुआ है, इस उसमें पूरा हमने थोड़ा व्हाट इज सेफ छेद लगा दिया, एक थोड़े टाइम के बाद सारे पानी निकल जाते। वैसे है आत्मा आ रहे सब निकल जाते है, कार्य प्राण पूरा चोट लगी है। कैसे है? विश्वास से नहीं चल से, दिमाग से चल रहे। जब जो दिमाग में चल रहे कैसे विश्वास से नहीं है, तो वो क्या है? पाप है। और पाप क्या है? अपने प्राण के विरुद्ध अपराध करते हैं, अपने प्राण के विरुद्ध अपराध करते हैं। वी आर सिनिंग अगेंस्ट अवर ओन सोल। पीपल डोंट रियलाइज यू आर वूंडिंग योर ओन सोल। चोट लिखी है सारे प्राण के ऊपर। और क्या होते हैं? इसलिए यीशु मसीह हमें दिखाने, उसके पहले जीवन क्या है? वो विश्वास का जीवन हमें दिखाने के लिए, विश्वास से जिया, विश्वास से मरा, मृत्यु से जी उठा, वो सब ये सब हमारे उद्धार के साथ जोड़ा हुआ है। हम उसके जीवन देखना पड़ेगा, यीशु कैसे चला, कैसे उसका मन और उसकी मार्ग उसके परमेश्वर के साथ मिला, वो देखना पड़ेगा। हम देखेंगे हिब्रायर के 4:15, 4:15, हिब्रूस 4:15।
क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन यह सब बातों में हमारी
वह सब बातों में हमारे
नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला।
सब बातों में उसका क्या होगा? परीक्षा हुआ। He was tempted at all points, लेकिन
निष्पाप,
पाप कभी भी नहीं किया। इसके अर्थ क्या कि उसको प्राण का एक्सरे निकालेगा तो कैसे होगा? चोट नहीं है, कभी भी उसके प्राण के विरुद्ध उसने अपराध नहीं किया, उपद्रव उसको प्राण को कभी भी नहीं किया। जिसका प्राण में उपद्रव नहीं है, जब समस्या आते हैं उन लोग नहीं डरते, नहीं डरते। समस्या कितने बड़े समस्या होते भी क्या है प्राण में? क्या है? ताकत है। कारण के उपद्रव नहीं किया है। इतने पाप करने के लिए संसारिक तरीका सब आ रहे हैं, लेकिन उन लोग कैसे है? परमेश्वर से सुनते हैं और विश्वास में ही चलते। यीशु ने शुरू तक अंत तक विश्वास में चला, इसलिए निष्पाप निकला। कैसे निष्पाप निकला? उसको वो भी लिखा है 4:12 में लिखा है, 4:12। यीशु है हमारे लिए प्रतीक,
क्योंकि परमेश्वर का वचन,
परमेश्वर का वचन
जीवित और प्रबल, और
जीवित और प्रबल
और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ,
जी प्राण और आत्मा की,
प्राण जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
प्राण और आत्मा को छेद कर हमारे मन के विचार और
भावनाओं को जांचता है।
वो है आत्मा का काम। वैसे यीशु चला, वो भी सुन रहे, संसार में चल रहे, संसार के बहुत बातें, इसके माँ एक बात बोल रहे, भाई लोग एक बात बोल रहे, समाज के लोग बोल रहे, चेला बोल रहे, समाज के धार्मिक लोग अलग 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 बात सुन रहे, लेकिन इधर का ऐसे है आत्मा के वो तलवार काट रहे, ये प्राण है ये आत्मा है, और आत्मा के प्राण के हर भावना और विचारों को जांचता है, उसको मालूम है ये प्राण से आ रहे, ये मेरे पिता के आत्मा से आ रहा है, जो पिता के आत्मा से आ रहा है वही वो करेगा, वही वो करेगा। एक दिन यरूशलेम के वो त्योहार के समय में उसके भाई लोग बोला चलो हम यरूशलेम चलेंगे, कारण अगर तुम मिनिस्ट्री में सेवकाई को निकला है तो सब देखना पड़ेगा। यीशु ने बोला तुम्हारा समय कभी भी है, तुम प्राण की बात बोल रहे हो, मेरा समय अभी आया नहीं, आत्मा से आत्मा नहीं बोला। उन लोग सब निकलकर यरूशलेम गया, थोड़ी देर बाद यीशु भी गया, कारण क्या, अभी आत्मा ने बोला तुम्हारा समय आ गया। हर भावना और हर विचार को जांचते हैं परमेश्वर का जीवित वजन, क्योंकि परमेश्वर का वजन कैसे है, जीवित कैसे होते हैं, ये वजन के ऊपर जब आत्मा आते हैं वजन जीवित होते, ये तो मरा हुआ वजन है, लिखा हुआ वजन है, इसमें जीवन नहीं है, इसका जीवन आने के लिए आत्मा आना पड़ेगा, आत्मा आना पड़ेगा, जब आत्मा आते उस पर जीवन होते, अगर ये वजन में जीवन है तो हर व्यक्ति के पास जीवन तो पढ़ते पढ़ते जीवन आ जाते, नहीं आते है? नहीं आते, जब वो पढ़ते आत्मा आते जीवन आते, नहीं तो जीवन नहीं आता, जब आत्मा निकल जाते हैं व्यक्ति का जीवन भी गया, जीवन भी गया, जीवित वचन, जीवित वचन। इस यीशु वैसा चला, उसने क्या किया, पवित्र आत्मा को मन की प्राण की हर भावना और विचार को जांचना दिया, आत्मा मुझे दिखा ये भावना कहां से आता है, संसार से प्राण में आ रहा है क्या, ये भावना आपसे आया हुआ है, ये विचार संसार से मेरे दिमाग में आ रहे है या आपके वजन के द्वारा आ रहा है। He always discern between these two। हम भी प्रार्थना करके वॉइस में आगे 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 बढ़ना पड़ेगा, कारण क्या है, प्राण भी सुन सकते लेकिन जांचना काम आत्मा का है, डिसर्नमेंट इज फ्रॉम द स्पिरिट। प्राण तो सुन सकते सब जगह से, प्राण सुन सकते लेकिन आत्मा कहां से सुनते हैं, सिर्फ परमेश्वर से ही सुनते हैं। प्राण परमेश्वर से भी सुन सकते, संसार भी सुन सकते, लोग से भी सुन सकते, दुष्ट आत्मा से भी सुन सकते, सबसे सुन सकते प्राण, लेकिन जो आत्मा है पवित्र आत्मा से ही सुनते हैं। इसलिए प्राण क्या सीखना पड़ेगा, कौन बोल रही है, ये आवाज कहां से आया, ये आत्मा के है या है संसार के। कभी कभी संसार की आवाज आत्मा के आवाज से ही आएगा, जैसे छोटे सामुएल को जब परमेश्वर बुलाया उसने एली के पास गया, कारण क्या, वो आवाज एली का आवाज जैसे था, तीन बार गया, तीन बार एली ने बोला मैंने नहीं बोला, तीसरे बार बोला अगर फिर सुनेगा तो बोलना हे प्रभु मैं खड़ा हुआ। उस वो टाइम में उसके मालूम है ये आवाज एली का आवाज जैसा था, लेकिन ये एली की आवाज नहीं परमेश्वर का आवाज है। इसलिए वो कहां से आते हैं, वे विचार वो जांचने का वो सामर्थ आत्मा से आते हैं। दूसरा कुरिन्थियर 3:6, कुरिन्थियर 3:6, इसमें हम होशियार होना पड़ेगा, कारण क्या है,
जिसने हमें नई वाचा को वाचा के सेवक होने
को, नई वाचा के सेवक है, पुराना वाचा का सेवक नहीं हूँ,
जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के
सेवक, नहीं
वरन
आत्मा के सेवक है,
क्योंकि शब्द मारता है
शब्द पर आत्मा जिलाता है। व्यवस्था के बारे में बोल रहे, व्यवस्था क्या करते है, मारता है लेकिन आत्मा
जिलाता
है। हम कोई नया वाचक के सेवक है, हम लोग सब नया वाचक है, वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द न्यू कवेनेंट, कारण हम नया वाचक में आया। पुराने वाचक में कौन लोग है, जो कोई जानवर के रक्त से पाप के मुफ्त एक साल के लिए मिलते, दूसरे साल फिर जाना पड़ेगा, लेकिन इधर मन में, मन से नहीं निकल, दोष नहीं निकलता, लेकिन जो यीशु में आया एक नया सृष्टि बन गया, पहले पाप को दोष सब निकाल दिया, पूरा निकाल दिया, और हम नया वाचक के सेवक है, हम लिखित वाचक के सेवक नहीं हूं, आत्मा के वाचा का सेवक है। वो आत्मा क्या लेकर आते हैं? जीवन देकर आते हैं। ये है सत्य। कारण क्या है? अगर आत्मा नहीं बोलेगा तो हम ही वो शब्द से चलेंगे, लेकिन शब्द से हमें मुफ्ती नहीं मिलते, प्राण का उद्धार नहीं मिलते, प्राण को चंगाई नहीं कर सकते। सौल ने जब परमेश्वर ने अगमभक्त सामुएल से जाकर बोला अमलकैर को सब मारो, उसने सबको मारा लेकिन सबको नहीं मारा। और जब अगमभक्त आया उसने बोला हा मैंने आज्ञा पालन किया, वो क्या है? शब्द का है, पालन किया है। अगमभक्ता ने क्या बोला? अगर तुमने पालन किया है तो मैं बकरी बाल बकरी का आवाज सुन रहे। उसने आत्मा के सत्य बोल रहे, ये प्राण के सत्य बोल रहे। हाँ मैंने प्राण में बोल रहे, मैंने सब आज्ञा पालन किया। आत्मिक लोग वो विचार देकर बोला नहीं नहीं तुमने पालन नहीं किया, तुमने अच्छा अच्छा सब अलग रखा हुआ है। ये है फर्क, ये फर्क। जो व्यवस्था में चलने लोग बोलेगा मैंने पालन किया, जो आत्मा विचार में चलने वालों से आत्मा बोले नहीं नहीं पालन किया, और सिद्ध होना पड़ेगा, और सिद्ध होना पड़ेगा। तुम शब्द से नहीं चल सकते, शब्द से नहीं चल सकते। इसलिए हम बोल रहे हमारा विचार हमारे भावना वो सब आत्मा से होना पड़ेगा। भावना से चल जाएगा तो हमारे सेवकाई कैसे होगा? शब्द की सेवकाई हो जाएगा, शब्द की सेवा, प्राण की सेवकाई होगा, आत्मा का सेवकाई नहीं होगा। हमको मालूम है मार्कोस के एक में हमने मालूम है एक पूरा दिन की सेवकाई के बाद यीशु ने आत्मा ने चलाकर सिद्धांत देते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते, रोगी को सब चंगाई देते, उसके बाद वो रात को थक कर सो गई, लेकिन सुबह सुबह उठकर एक जंगली स्थान में जाकर वो प्रार्थना कर रहे सुबह अगले दिन। और शहर के लोग सब आ गई, मार्क चैप्टर 135, शहर के लोग सब आ गए, और आते समय पत्रों से सब जाकर क्या बोल रहे प्रभु 35-36 हम पढ़ते समय में, आप देख लिए उधर देखिए मार्क 1:35।
और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा, तब शमौन और उसके साथ ही उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे, लोग कैसे लोग हैं? रोगी है, सब रोगी है, शहर के रोगी लोग सब आए। अगर भावना से चलेगा तो प्राण बोलेगा ये अच्छे खाने रोग सब आ गए, मेरे चंगाई के लिए सामर्थ्य भी है, चंगाई के लिए सामर्थ्य है, आत्मा ने सामर्थ्य दिया है, चंगाई का वो गिफ्ट है, चंगाई दे सकते, लोग सब सुबह आ गया। लेकिन यीशु का उत्तर देख लो,
उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं।
वो कहां कैसे मिला वो? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने प्रार्थना के टाइम में बोला आज तुम्हारा काम ये नहीं ये है। अगर भावना में चलेगा तो क्या होगा? वरदान तो है नहीं आपको जाकर सबको चंगाई दे सकता, लेकिन प्राण में क्या लगा? चोट लगा। कारण क्या है? विश्वास का काम नहीं है, विचार का काम है, चोट लगा। जो जो विश्वास में नहीं करते वो सब क्या है? पाप है। पाप करते टाइम में क्या होते? अपने प्राण को चोट लगते। यीशु ने अपने प्राण को कभी भी चोट नहीं लगा। कारण क्या है? आत्मा से चल रहे। वाई से चलने के लिए हम सीखना पड़ेगा। ये है यीशु का हर पूरा जीवन वाई से था। हमने बेतसैदा का देखा, सारे इसराइल को वजन देने के लिए चंगाई देने के लिए यीशु आया, लेकिन एक दिन सारे इसराइल को छोड़कर एक समरिया के स्त्री के लिए गया। वो विचार और भावना से नहीं, आत्मा से चला रहे। अगर विचार से बोलेगा तो नहीं मैं इसराइल के लिए आया हूं, लेकिन आज आत्मा बोल रहे चलो उधर मरुभूमि में चलो, एक स्त्री आ जाएगा, उसका चंगाई का दिन है आज, उसका उद्धार का दिन है आज। अगर उसके विरुद्ध में जाकर इसराइल में एक अच्छा भाषण दिया, 5,000 लोगों को खाना भी खिलाएगा तो उसको प्राण को क्या होगा? चोट लगेगा, प्राण को चोट लगेगा। कारण तुम जो जो विश्वास से नहीं है वो सब क्या है? पाप है, सब पाप है। इसलिए वो सुनने के लिए हम सीखेगा और जब जब आत्मा दिखेगा प्रभु मैंने आज इतने काम किया, प्रभु बोला हाँ इतने काम किए लेकिन इतने काम में आधा तो काम अपने तो मैंने किया, तुम्हारे प्राण को चोट लगाया है इसलिए पश्चाताप करो और मैं तुम्हें चंगाई देंगे, आई विल हील योर वुंड्स। दिस इज द वॉक ऑफ फेथ, दिस इज वेयर वी स्ट्रगल। ये है प्राण की उद्धार, कैसे विश्वास और विश्वास से ही हो सकता, हमारे आत्मा का अनुग्रह से हमारे प्राण विश्वास है। रोमियो के 8:14
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
वही परमेश्वर का पुत्र है, आत्मा चलाना पड़ेगा, आत्मा चलाना पड़ेगा, प्राण नहीं आत्मा चलाना पड़ेगा। अगर जो आत्मा चलाते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। बहुत सारे बातों आत्मा बोलने का जरूरत नहीं, वो हमने सुन चुका हुआ है, पहले सुन चुका, बहुत सारे विश्वास से हम वजन से सीख लिया है, ऐसे करना ऐसे मत करना ऐसे करना ऐसे मत करना, वो सब सीख लिया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे बात परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, रविवार को दिन कलीसिया जाना है नहीं जाना वो पूछने का जरूरत नहीं है, वो तो पहले बोल चुका है कलीसिया एक साथ आ रहे हैं। लेकिन रविवार को कलीसिया में कैसे जाना वो आत्मा बोलेगा, तुम तैयारी नहीं किया, तुम्हारे प्राण में तैयारी नहीं है, तेरे शरीर में तैयारी नहीं है, तेरा प्राण में पूरा संगा है, तेरा मन में पूरा अविश्वास है, तुमने तैयारी, रविवार तो कलीसिया जाना ही है लेकिन संगा लेकर नहीं जा सकते, अविश्वास लेकर नहीं जा सकते। आत्मा बोलेगा तुम आज रविवार में चले गए कुछ भी नहीं होगा कि नहीं तुमने तैयारी नहीं की, तैयारी नहीं, वो सब आत्मा दिखाते, आत्मा प्राण से बोलेगा प्राण तुम तैयारी नहीं है। वो हर रविवार को उठकर नहीं पूछना पड़ेगा आप प्रभु आज रविवार है आत्मा बताओ मैं जाना है वह नहीं, वो तो नहीं पूछना पड़ेगा। लेकिन तैयारी नहीं है तो आत्मा बोलेगा, वो प्राण तैयारी के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो भजन संग्रह भजन
संहिता
41:4 नेपाली में भजन संग्रह बोल सके 41:4
मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर मुझको चंगा कर क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है।
अंग्रेजी में ऐसे लिखा है मेरा प्राण को चंगा कर, कारण क्या है मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया, तुम्हारे विरुद्ध मैंने पाप किया और क्या हो गया मेरा प्राण को चोट लगी, प्राण को चोट लगी। वी हैव वुंडेड आवर सोल्स, हमारे प्राण को क्या लगी चोट लगी, कारण क्या है हमने पाप किया। हमने सोच बहुत सारे लोगों से और हमारे सब इतिहास वैसे था पहले क्या है, हम बोलेगा इसने मुझे चोट किया, मेरे विरुद्ध अपराध किया, मेरे विरुद्ध पाप किया इसलिए मेरा हालत ऐसे। प्रभु बोल रहा नहीं, तुमने पाप किया और तुम्हारा प्राण में चोट लगी, दूसरे तुम्हारे विरुद्ध में पाप करते करते तुम्हारे प्राण में चोट नहीं होते, कभी भी नहीं होते। Nobody can sin against you and hurt your soul. Does not happen unless you allow it. दूसरे व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध में कितना कठोर काम करेगा तो अगर तुम पाप नहीं करेगा तो तुम्हारे प्राण में क्या नहीं होते, चोट नहीं लगते, चोट नहीं लगते। जोसेफ के सारे भाइयों ने उसके विरुद्ध पाप किया लेकिन उसने पाप नहीं किया इसलिए उसके प्राण चोट नहीं लगे, उसने सबको क्षमा किया इसलिए उसको प्राण में चोट नहीं लगी। फोटिफर की श्रीमती ने उसके विरुद्ध में पाप किया, फोटिफर में नहीं पाप किया और उसको जेल में डाला लेकिन उसके प्राण में चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति हर वक्त उसकी साथ था, उसके उसका अर्थ क्या है आत्मा प्राण से बातचीत कर रहे हैं, गुलाम के रूप में कमारा के रूप में उसने बेच लिया, लेकिन व्यक्ति शरीर में कमा रहे, प्राण में कमारा नहीं है, आजादी है, चोट नहीं लगे, आत्मा से अच्छा से सुन रहे कैसे काम करना, ये तुम्हारे मालिक के लिए ये करो ये करो ये करो, मालिक देखते देखते उन्नति हो रहे, कारण के ये व्यक्ति प्राण से आत्मा से अच्छे से सुन रहे, कारण आत्मा में क्या नहीं है, चोट नहीं है, कारण क्या है, उसके विरुद्ध लोग ने पाप किया लेकिन उसने अपने मन में भी नहीं दूसरे के विरुद्ध में पाप नहीं किया, इसलिए प्राण में चोट नहीं लगी। यीशु के विरुद्ध में सब लोग पाप किया लेकिन यीशु किसी के विरुद्ध में पाप नहीं किया, इसलिए प्राण में क्या है, चोट नहीं लगी। अंत में यीशु को क्रूस में चढ़ाते टाइम में भी सब पापी पाप की बातें बोल रहे, वे मुख खोलकर क्या बोलते, अनुग्रह की बात बोल रहे, उसके कारण क्रूस में भी उसके प्राण में क्या नहीं है, चोट नहीं, शरीर में पूरा चोट लगी है लेकिन प्राण में चोट नहीं लगा है। ताकत कहां से आते है, प्राण से ही आता है, अगर प्राण में चोट लगी तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये महामारी कुछ भी नहीं, इससे बड़ा महामारी आ जाएगा, लेकिन क्या होना पड़ेगा, हमारे प्राण का चंगाई होना पड़ेगा, हमारे प्राण का उद्धार होना पड़ेगा, अगर प्राण का उद्धार नहीं है तो शरीर में देख लिया ना, शरीर में कितना लोग, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर को भी कोविड पकड़ा, कितने लोग मर गए, छोटे लोग ने बड़े बड़े लोग अमीर लोग भी सब मर गए, कारण क्या, शरीर से कुछ नहीं चलता, ये प्राण की बात है, अगर प्राण प्राण में चोट नहीं लगी, मरेगा तो हंसकर ही मरेगा, डर कर नहीं मरते, स्टीफन जैसे हंसकर ही मरेगा, स्वर्ग खुला भी देखता, डर नहीं होता, कारण क्या है, प्राण में चोट नहीं लगा, उसके मारने टाइम में भी वो बोल रहे प्रभु इन लोग को माफ कर लो, इसलिए उसका मरते टाइम अभी प्राण में क्या नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, शरीर में पत्थर आ रहे, शरीर में पूरा चोट लगी लेकिन प्राण में कुछ नहीं, ये प्राण की उद्धार की बात है, अनुग्रह से आत्मा का उद्धार होते हैं लेकिन प्राण का उद्धार विश्वास, और कलीसिया ये छोड़ दिया, ये बातें छोड़ दी, और एक दुष्ट प्रचार से क्या हुआ है, कलीसिया को शरीर में पकड़कर संसार में लेकर गए, शरीर की उन्नति के बारे में सब एक सिद्धांत लास्ट 50 साल के अंदर सब कलीसिया के अंदर आ गया, तुम्हारा उद्धार के बाद उन्नति के बाद शरीर की उन्नति, पैसा गाड़ी घर ये सब नाम कमाना सब के लिए इस्तेमाल कर लो, क्या हो गया, आत्मा को छोड़कर ये शरीर को पकड़कर प्राण कहां गया, संसार में गया, और क्या हो गया, इसमें चोट लगा, ये है भजन 106:15।
तब उसने उनसे मुंह मांगा वर तो दिया परंतु उसके प्राण को सुखा दिया,
प्राण को सुखा दिया, ये है आज का सुसमाचार, जो मांग लो मिल जाएगा, जो मांग लो मिल जाएगा, उन लोग गवाही भी आकर बोलते मैंने मांग लिया पाया, उन्नति के लिए मैंने उन्नति मिला, पैसा के लिए मैंने पैसा मिला, घर के लिए मांगा घर मिला, गाड़ी के लिए मांगा गाड़ी मिला, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, प्राण को
सुखा दिया,
सुखा दिया, प्राण को सुखा दिया, ये है सत्य, अगर प्राण सुख जाएगा तो विश्वास के काम, यीशु आते टाइम में क्या हो गया, आत्मा अलग ये दोनों अलग, इसका उद्धार हो गया, इधर तो ये दोनों का तो उद्धार नहीं होया, निर्दोष नहीं है मैं आते टाइम में निर्दोष, ये दोनों संसार के साथ जोड़ा, तुम्हारा उद्धार तो मिल जाएगा लेकिन एक बच्चे के रूप में स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एक सेवक हो जाएगा, कारण क्या है, इस दोनों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे छोटे बच्चे सब घर में है ना, खास में हमारे सेवक है, हम बोलते कब सोना कब उठना, जाओ सो जाओ, पप्पा नहीं जाकर सो जा, खाओ बैठो उठो, सेवक के रूप में, कारण क्या है, हम क्यों उससे बोल रहे, उसका मन का परिवर्तन नहीं हुआ, जब मन का परिवर्तन होते टाइम में हम नहीं बोलते उठो पढ़ो, नहीं बोलते, बोला तुम अपने आप चल सकते, लेकिन कलीसिया के अंदर क्या हुआ है, मन का परिवर्तन नहीं हुआ है, यीशु का मार्ग, यीशु का चिंता सग, इसलिए एक दिन हम भी बोलेगा परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल नहीं सकता, परिवर्तन नहीं हुआ। आत्मा का उद्धार हुआ अनुग्रह से, इसका उद्धार विश्वास से ही होता। विश्वास में आगे नहीं बढ़ेगा तो उन लोग क्या कर दिया, विश्वास शरीर के साथ जोड़ दिया। विश्वास क्या है, ये पाना, विश्वास से चंगाई मिलता सच है, छुटकारा मिलता सच है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है, बदला मन बदला। एक आत्मा का सिर्फ एक काम है, छोटे काम ही है, लेकिन विश्वास का बड़ा काम क्या है, मन बदल रहे। परमेश्वर का मार्ग और उसका विचार आकाश और पृथ्वी में कितना भरग है, उतना भरग है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास में चलते हैं, उसमें मन में क्या है, आकाश और पृथ्वी जोड़कर एक बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, उसका प्रार्थना अपने जीवन में सफल है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हुआ है, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा विचार, मेरे मार्ग और मेरे विचार के जोड़कर मैं तुम्हारे साथी चल रहे। जोसेफ ऐसे चला और उसने अपने प्राण को क्या नहीं किया, चोट नहीं दिया। अब देख लियो उत्पत्ति का 29 का 8 और 9, 39:8-9।
पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा,
स्वामी की पत्नी से कहा,
सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुम्हें छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
उसने क्या बोला, मैं परमेश्वर का अपराध नहीं करूंगा। परमेश्वर के अपराध, अगर परमेश्वर के अपराध करेगा तो मैं अपने प्राण को चोट लगे रहे। वो मालिक नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं जानेगा, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? उसने बोला प्रॉब्लम यह है, मेरा समस्या है, अगर मैं ये पाप करेगा तो संसार के एक लोग भी नहीं जानेगा, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करेगा तो मेरे प्राण में क्या लगेगा, चोट लेगा। उसके विरुद्ध में पाप भी किया, मेरे प्राण को चोट भी लगा, चोट भी लगा। इसलिए साम 34:22 भजन संग्रह,
भजन संहिता,
ओके,
भजन संहिता
नेपाली 34:22 क्या लिखा है,
यहोवा अपने दासों का प्राण मोल बेचकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा।
Psalm 34, can I have it in English?
34:22
Okay, 34 and verse 22. परमेश्वर क्या करते हैं, वो अपने दासों का प्राण को मोल देकर
बचा लेता है,
बचा लेते, प्राण को बचा लेते हमारे परमेश्वर। ये सीजन अब 36 दिन हो गया ना, 25-35 दिन हो गया, सारे संसार को बंद कर रखा। कारण क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को प्राण को चंगाई के लिए समय दिया है, क्योंकि सबके प्राण कैसे है, चोट लगा हुआ है, और चोट कैसे हुआ, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, लोगों के विरुद्ध पाप किया, और चोट लगा हुआ है। परमेश्वर ये समय सबको परिवार परिवार बनाकर सबको बंद कर रखा हुआ क्या है, ये समय किसके लिए दिया है, हमारे चंगाई के लिए दिया है, प्राण के चंगाई के लिए है। इसलिए हमारे परमेश्वर के वो अजीब वो प्रार्थना उसने सिखाया ना, जो हमारे स्वर्गीय पिता, वो प्रार्थना में एक, बाकी सब मुक्त है, सब मुफ्त है, लेकिन एक बात मुफ्त नहीं है, वो क्या है, माफी मुक्त नहीं है। माफी के लिए हम क्या करना है, जो मेरे विरुद्ध में जिसने अपराध किया है वैसे ही मैं भी
क्षमा कर,
वो क्षमा के बाद प्राण के लिए, जिसके जिसके प्राण में चोट लगा हुआ है क्या करना पड़ता,
क्षमा करना।
अगर क्षमा नहीं किया तो क्या होते, प्राण में चोट लग जाता, वो चोट लगा हुआ प्राण से लोग चलता है, इसलिए क्लेश आते टाइम में ताकत ही नहीं है। परिवार में, शादी में, बच्चे के साथ, ऑफिस में, सब जगह में, जीवन में क्लेश है। समस्या क्लेश की बात नहीं है, समस्या क्या है, प्राण में चोट लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे है, प्रार्थना में क्या सिखाते, माफी कर लो। चंगाई के काम कैसे है, माफी से होते है ना। मतलब या जोसेफ ने वैसे चला, उसके पूरा इतिहास सब 13 अध्याय में उसके इतिहास है, उत्पत्ति में एक बार भी उसने अपने भाइयों के बारे में, श्री पोटिफर के श्रीमती के बारे में और पोटिफर के बारे में कभी भी नहीं बोलते। कारण क्या है, हृदय से क्षमा कर कर आगे आगे बढ़ रहे। यीशु ने बोला अगर तुमने क्षमा नहीं किया तो क्या होते है, तुम्हारा प्राण का चंगाई नहीं होता। सिखाया हुआ मत्ती के 18:32-35, 32-35 तक है ना। एक व्यक्ति एक राजा से इतने पैसा वापस देना था, उसके पैसा नहीं था, इसलिए उसने माफी किया। लेकिन वो जाकर दूसरे एक दास को पकड़ा जो एक छोटी इनाम वापस करना था, उसे जेल में डाला। ये सुनकर उसने मालिक ने ये किया, बोला देख लो।
तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुम्हें तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया।
दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। और क्या बोला
कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे।
उतने से होगा, बहुत सारे ये भी पढ़ लीजिए और वापस 34 में जाएंगे।
इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।
प्राण में चोट लगे हुए लोग कैसे होते, क्षमा भी नहीं करते, उसके साथ साथ दुष्ट आत्मा का असर उन लोग के जीवन में पूरा चलता, शांति नहीं है। कारण क्या, परमेश्वर बोला उसने चोट डालो, जब तक उससे अंत में क्या करते उन लोग, लास्ट में कोई लोग आकर बोले हाँ प्रभु मैं क्षमा करेगा। प्रभु वो तो पहले कर सकता था ना, पहले कर सकता, तेरा जीवन बर्बाद हो गया ना इतने दिन इतने साल, पहले कर सकता, मैंने बोला था ये, जब तक तुम क्षमा नहीं करेगा वो दंड देने वाले के हाथ में तुम्हें सौंप देता। बहुत सारे लोगों का समस्या, जीवन का समस्या क्यों दूर नहीं होता, ये कारण से दूर नहीं होता क्योंकि जीवन में, क्योंकि जीव संसार में शरीर से जाते हैं लेकिन संसार के जीवन के सारे क्लेश के लिए, क्लेश दूर करने के लिए हमारे प्राण में क्या चाहिए, चंगाई चाहिए, बल चाहिए। ये है मरुभूमि में के वो लोग, पहले पीढ़ी जो मिस्र देश से आया, उन लोग सब मरुभूमि में मरा। कारण क्या है, उसके प्राण कैसे था, सुखा था। दूसरे पीढ़ी जो उठा, प्राण में सुखा नहीं था, सब शत्रु के ऊपर जीता। हमारे लिए आत्मिक सत्य है, आत्मिक शत्रु है वो, दंड देने वाला आत्मिक शत्रु है, सबके ऊपर हम जीत सकते हैं जब हमारे प्राण में सुखा नहीं है, प्राण में चोट नहीं लगा हुए, प्राण से हम सबको, मन से हम सबको क्षमा किए। अगर चाहिए तो ये नया पीढ़ी के बच्चे लोग सब, अब उम्र बढ़कर बहुत, कितने साल हो गया है, 50 साल के है, 40 साल हो गया, 60 साल का हो गया, उन लोग सब बोल सकते हमारे जीवन के 40 साल हमारे माँ और पिता के गलत के कारण ऐसे बर्बाद में चल गए, उन लोग बोल सकते, लेकिन परमेश्वर उन लोग से बोला माफी करना। मुख से कभी भी वो नहीं बोलना, मेरे पिता के कारण, मेरे माँ के कारण मुख खोलकर कभी भी नहीं बोलना, अगर बोलेगा तो तुम श्रापित हो। विजय पाने वाला मैं हूं, उन लोग नहीं बोलेगा तो सच है, इन लोगों को विश्वास ही नहीं था, इन लोगों का अविश्वास के कारण मेरा जीवन भी 40 साल गई, उन लोग बोलेगा तो वो सच है। प्रभु बोला मुख बंद करो, अगर तुम मुख खोलकर बोलेगा तुम भी नहीं जीतेगा, क्षमा करके छोड़ देना। इसलिए उन लोग जीता। आजकल की बच्चे लोग सब बोलेगा मेरा माँ के कारण, पिता के कारण, पति के कारण, पत्नी के कारण, प्रभु बोले मुख बंद करो, क्षमा कर आगे 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 बढ़ो, नहीं तो क्या होगा, दंड देने वाले के हाथ में सौंप देते और हम नहीं जीत सकते। ये है सबसे बड़ा कलीसिया के अंदर, परमेश्वर की मंडली, वो कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा बात क्या है, क्षमा नहीं करते। संसार के लोगों के बारे में नहीं, उसको तो पहले उद्धार होना पड़ेगा, बाकी सब छोड़ो, आत्मा नहीं है, उन लोग प्राण और शरीर में चले गए, जो कलीसिया में आ गई आत्मा से जोड़ा हुआ है, प्राण में पूरा चोट लगी है, कारण सबसे बड़ा कारण क्या है, क्षमा नहीं किया, वो है सबसे बड़ा पाप, क्षमा नहीं करते और उसकी बात विश्वास में नहीं चलते। संसार के तरीके में वजन पढ़कर, वजन में ध्यान रखकर, आत्मा से नम्र होकर, प्रॉब्लम समस्या क्या है प्राण में क्या है, जब क्षमा नहीं करते फिर आत्मा से नहीं सुनते, फिर दिमाग से ही चलता, आत्मा से सुनने प्रार्थना को जाते टाइम में प्रभु मेरे जीवन में समस्या है क्या करूं, प्रभु बोलेगा क्षमा करो, लेकिन क्षमा के विषय लेकर नहीं गया, दूसरे ऑफिस में प्रॉब्लम है श्रीमती को क्षमा करो, प्रभु वो नहीं है ये समस्या, नहीं ये समस्या, ये है समस्या तेरे, तुम्हारे लिए ये समस्या, मेरे लिए ये है समस्या, पहले इधर करो मैं वो दूर कर देंगे, ये नहीं नहीं वो उसको तो क्षमा तो नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं है उसने क्या किया, प्रभु तुमने मेरे विरुद्ध में क्या किया मुझको अच्छा से मालूम है। वही बोला मालिक ने बोला न ए दुष्ट, मैं तुम्हारा कितना माफी दिया, हर दिन हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग, हर सुबह परमेश्वर का अनुग्रह और माफी हमें मिलते हैं, अनुग्रह इज ग्रेस नो, हर सुबह तुम करुणा, तुम्हारा करुणा हर सुबह हमें मिलते हैं, लेकिन तुम करुणा नहीं दिखाते, जब तक तुम करुणा न देखते दंड देने वाले के आगे तुम्हें छोड़ दे, इधर ही फंसा हुआ है लोग सब, इधर ही फंसा हुआ है, ये है वजन का सत्य। हमने दानियल के पुस्तक से भी देखेंगे, एक एक उसके जीवन के एक विषय देखेंगे क्या हो गया, वो देश में उन्नति पाया है, उम्र में भी बड़ा हुआ है, वो व्यक्ति में फंसाने के लिए सारे देश के कानून बदल दिया, एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, वो कानून क्या है, 30 दिन के लिए कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, और उसने तो जाकर प्रार्थना तो किया और पकड़कर शहर के वो गुफा में डाल दिया। देख लो क्या हो रहा है, दानियल के 6:22 से देखेंगे, पहला 22।
मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर
राजा ने सुबह आकर दानियल दानियल कैसा है उसका उत्तर है, उत्तर क्या है, मेरे परमेश्वर ने
अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की।
परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर सिंह के सब मुख बंद कर रखा, मेरे कुछ भी हानि नहीं, कारण क्या है,
इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया
गया। मैं परमेश्वर के सामने कैसे है,
निर्दोष
और
हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की,
तुम्हारे आगे भी मैं निर्दोष, इसलिए सिम को मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सका, सिम किसका प्रतीक है, दुष्टात्मा का प्रतीक है, मेरे प्राण में कुछ भी नहीं कर सका, कारण क्या है, परमेश्वर के आगे भी तुम्हारे लोग के आगे भी मैं निर्दोष। हम जब दुष्ट आत्मा के ऊपर कब जीतते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे और लोग के आगे निर्दोष है, दुष्ट आत्मा सिंह के रूप में है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर निर्दोष नहीं है तो देखेंगे क्या होगा, 23।
तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी, सो दानियल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया,
कोई चिन्ह नहीं पाया,
क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता
था। उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, वही है, कानून तो आ गया, कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आत्मा बोल रहे उठकर प्रार्थना करो, दिन में कितने प्रार्थना कर रहे, 3 बार, खिड़की खोलो प्रार्थना करो, उसने संसार के अनुसार नहीं गया, उसने आत्मा के अनुसार गया और उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था और उसने परमेश्वर ने उसको विश्वास को माना। उसने क्या किया, तीनों को चलाकर परमेश्वर की ओर गया, पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं आया। यह विश्वास का जीत है। और हिब्रायर के 11 में बोला गया, लोग विश्वास से कैसे है, सुम के मुख बंद किया। उसने उधर क्या बोला, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर सिम को मुख बंद किया। हिब्रायर में लिखा है विश्वास से सिम का मुख, ये दोनों जोड़ दिया। कारण क्या है, प्राण में चोट नहीं था, परमेश्वर की ओर और राजा की ओर में निर्दोष है। ये वो ही प्रभु बोल रहे, एक दिन यीशु मसीह आते टाइम में हमारा आत्मा, हमारा प्राण और हमारा शरीर निर्दोष, उसको निकालते समय, गुफा से निकालते समय में प्राण में भी चोट नहीं, शरीर में भी चोट नहीं थी, दोनों में निर्दोष था। आत्मा में परमेश्वर के आगे, प्राण में लोगों के आगे, शरीर में भी सारे संसार के आगे व्यक्ति तो निर्दोष है। वैसे होना पड़ेगा यीशु मसीह आते टाइम में। लेकिन जो लोग निर्दोष नहीं था, 24 में लिखा हुआ है क्या हुआ,
और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों के समेत लाकर सिंहों के घड़े में डाल दिए जाए, और वे घड़े की पैंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला।
सबको, पिता श्रीमती बच्चे सबको। कारण क्या है, निर्दोष नहीं था, निर्दोष नहीं था। जब पिता और माँ निर्दोष नहीं है, वो परिवार में पूरा क्या होता है, दुष्ट आत्मा का असर आते, बच्चे भी फैल जाते, बच्चे भी फैल। उसका अर्थ ये है, वो शारीरिक रूप में एक दिन हुआ, लेकिन आत्मिक अर्थ क्या है, जब एक विश्वासी पिता और विश्वासी माँ विश्वास में नहीं चलते, क्या होते, उसका असर सारे परिवार में आते, सारे परिवार में आते, दोनों चलना पड़ेगा, सारे ऊपर आते, सबके बच्चे को ऊपर आते। इसलिए ये एक विश्वास की यात्रा है। सौल राजा के बारे में पढ़ते टाइम हमने देखते, उसने कभी भी नहीं जीता, दाऊद ने जीता, बहुत बहुत गलत किया, लेकिन अंत तक उसने दाऊद पूरा किया। ये एक यात्रा है। हम अंत में हेब्रायर पढ़ेंगे, हेब्रायर के 12, 22 से 23 तक जाएंगे। हेब्रायर के 12, हिब्रूस 12:22।
पर तुम सियोन के पहाड़ के पास,
और हम सियोन के पहाड़ के पास, पर ये एक एक आत्मिक सत्य है। परमेश्वर का नया होगा, नया पृथ्वी, नया स्वर्ग और नया शहर। वो नया शहर है यरूशलेम, यरूशलेम का सबसे ऊंचा जगह है सियोन पहाड़। तुमने कहाँ आया है, सियोन
पहाड़। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम,
स्वर्गीय जल पास आ गया है,
और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलिशिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं,
सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्मा। सियोन पहाड़ में कौन होगा, जो जो धर्मी लोग आत्मा में, जब हम उद्धार पाया, परमेश्वर क्या माना, हमें धर्मी माना, अब क्या होना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध हुए धर्मी लोग कहां होगा, सियोन पहाड़ में होगा। ये दौड़ में हम, सियोन पहाड़ में कौन है, परमेश्वर का मेमना है। भजन में लिखा है ना, प्रकाश के 14 में लिखा है, सियोन पहाड़ में मैंने किसको देखा, मेमने को देखा, उसके साथ कौन था, 144,000 था। कारण कौन है, वो जो कौन है, धार्मिक, जो आत्मा में सिद्ध हुआ, प्राण में सिद्ध हुआ, उसको शरीर में एक नया शरीर भी, महिमित शरीर भी मिला, शरीर भी निर्दोष था, प्राण भी निर्दोष था अंत में, और आत्मा भी निर्दोष था, और परमेश्वर के सियोन पहाड़ में उन लोग आया। बाकी लोग अलग 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 जगह में होगा, लेकिन हमारे दौड़ कहां पहुंचने के लिए, सियोन पहाड़ में पहुंचने के लिए। सियोन पहाड़ में निकले को धार्मिक, धार्मिक कब होते हैं? जब जिसने विश्वास किया परमेश्वर उसने धार्मिक माना। वो किसके बाद बोल रहे हैं? आत्मा के बाद। उसके बाद दौड़ शुरू हो गया। दौड़ कहाँ है? ये प्राण के बारे में। संसार में देख लो ज्यादा है ज्यादा ईसाई लोग इसमें तो फंस गई, इसमें तो फेल हो गया, संसार में चली गए। सब संसार की बात है, उसको बात संसार के है, सब कुछ संसार के बारे में है, आत्मा के साथ जोड़ा हुए नहीं। इसलिए क्या हुआ है? प्राण में पूरा चोट लगी है। लेकिन जीवन के अंत आते टाइम में प्रभु से रोएगा, प्रभु मले बचावो। दो क्रूस में एक चोर था, वैसे लाश में बचाकर जाते हैं। शरीर भी सिद्ध नहीं हुआ, प्राण भी सिद्ध नहीं हुआ, प्रभु बोला आ जाओ। कैसे आ गया? आग से आ गया, आग से आ गया। संस जीवन का काम पूरा जल गया, सब जल गया, सिर्फ आग से ही आता। इसलिए वचन में लिखा है अनुग्रह से उद्धार, विश्वास से उद्धार, आशा से भी उद्धार। लेकिन हमारे आशा असल है तो विश्वास भी असल होना पड़े। विश्वास कितने असल होते उतना आशा भी असल होते। आशा किसकी आशा है? शरीर की आशा है। एक महिमित शरीर मिलेगा मुझे, एक मुकुट मिल जाएगा। वो कहां से आते हैं? वो विश्वास अंदर। इसलिए कोरिंथियर में अंतिम वचन देखेंगे, कोरिंथियर 4:16 से पढ़ेंगे, 16 और 17। सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 4:16-17।
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते,
हियाव नहीं छोड़ते,
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य,
हमारे बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता,
तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है।
वो तो होना पड़ेगा, उम्मीद होना, वो तो देख सकते हैं। भीतरी मनुष्य वो है, वो प्राण है, प्राण मालूम होना पड़े। हाँ सच है, मेरा प्राण बदल रहे, मेरे प्राण का चिंता विचार सब यीशु के साथ मिल रहे और मेरा मार्ग और परमेश्वर के मार्ग के साथ मिल रहे। इसलिए बाहर क्या हो रहे है? नाश हो रहे, लेकिन अंदर क्या हो रहे? भीतरी मनुष्य के क्या होते? प्रतिदिन नया होता। तो आशा भी असल है, शरीर के लिए महिमा मिलेगा, आशा असल है। शरीर का उद्धार कहां से होते है? आशा। आशा असल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तुम्हारा विश्वास असल होना पड़ेगा। मेरा प्राण, मेरा प्राण शरीर में मत देखना, शरीर में मत देखना, कहां देखना? प्राण में देखना, प्राण का विचार सा विचार। मैंने बोला तीन बात था, क्या था पहले? हमारा चिंता और हमारा व्हाट यू से फॉर भावना,
भावना
और हमारा
विचार,
यू नो वो विचार सब सब, क्योंकि आत्मा यो सब दिखाते। हमारा मुख से आने वाला बात ठीक होगा लेकिन विचार अलग हो सकते, विचार अलग से कर, हमारा भावना अलग हो सकते। परमेश्वर ये तीनों सब देखते, सब मिलना पड़ेगा, सब मिलना पड़ेगा। आगे नहीं मिलेगा तो यीशु के मुख से क्या बात आया, उसका मन का विचार, उसका भावना सब आत्मा से जोड़ा हुआ है, सब सिद्ध है, वहां तक हम पहुंचना पड़ेगा। इसलिए कलीसिया के लोग कहां हैं? संसार पर आंख नहीं रखते, महामारी पर आंख नहीं रखते, आपके प्राण के उद्धार के ऊपर आंख रखना, शरीर के ऊपर भी नहीं रखना। फास्टिंग सब करो, उपवास करो, कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छा समय उपवास के लिए, अच्छा समय है। क्या खाएगा मत उसकी उम्मीद में मत चलना, चिंता में मत चलना, इसके प्राण के उद्धार के बारे में सोचना ना। नहीं तो क्या होगा, ये समय भी चली जाएगा और ऐसे समय नहीं मिलेगा। कलीसिया को कभी भी ऐसा एक समय कभी भी नहीं मिलेगा। क्या है? रिश्ता सब ठीक करना, परमेश्वर के साथ और अपने आप के पास मिलाप बोलते हैं ना, परमेश्वर के साथ पवित्रता और लोगों के साथ मिलाप। ये समय कभी भी नहीं मिलेगा। जब लॉकडाउन खत्म हो गया फिर हम वापस कहां जा रहे हैं? वापस संसार में जा रहे हैं। ये समय तो नहीं मिलेगा। संसार न, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक तोहफा दिया है, ये समय मेरे दूसरा आगमन के लिए तुम तैयारी करो। सबको लॉकडाउन में लिखा है लेकिन हमारे लिए लॉकडाउन नहीं है, लॉक्ड इन है। परमेश्वर के साथ और परिवारों के साथ मिलाप करो। परमेश्वर के साथ क्या खोजना? पवित्रता। लोगों के साथ शांति और मिलाप। सोचना, परमेश्वर बोला तुम्हारे प्राण में कितना चोट लगी थी, सबको चंगाई मिलेगा। और जब तुम इसकी बात संसार में जाते, महामारी के बाद क्या आते, अनिकाल आते, लेकिन तुम अनिकाल देखते टाइम ईसा के जैसे नहीं डरेगा। अनिकाल के बीच में तुम्हारा उन्नति होगा। कारण क्या है, तुम्हारा प्राण के चोट का सब चंगाई हो गई, तुम्हारा आत्मा से जोड़ा हुए, मैं तुमसे बोलेगा अनिकाल के समय में क्या करना। सारे देश में अनिकाल में सबका गरीबी हो रहा है, सिर्फ आइसक को उन्नति हो गया, कारण उसने आत्मा से सुना क्या करना अनिकाल के समय में। एक ही व्यक्ति का उन्नति हुआ गया, कारण क्या है, ही हर्ड इन द स्पिरिट। मत जाओ मिस्र देश में, मत जाओ। कारण क्या है, उसका अर्थ क्या है, संसार के तरीका में मत जाओ। संसार के अलग अलग तरीका है अनिकाल दूर होने के लिए, वो मत जाओ। क्या करना, ये अनिकाल के समय में तुम तुम्हारा बीज लेकर धान रोपना, कोई भी नहीं करेगा। वो अलग अलग बात परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों से अनिकाल के समय में बोलेगा, क्या करना सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए क्या है, प्राण में चोट नहीं होना, प्राण में चंगाई होना पड़ेगा। और उसके बाद आइसक के जीवन देखते टाइम में उन्नति है, शांति है, उसके डर भी नहीं, इतने सारे उसकी उन्नति। हमें शारीरिक उन्नति के बारे में नहीं बोल रहे, हमें प्राण की उन्नति के बारे में। और उसके शत्रु लोग सब उसके पीछे, उसने एक कुआ उठाते पानी मिलते, शत्रु लोग आकर बोल रहे हमारे, वो बोल रहे ले लो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। दूसरे कुआ उधर भी उसको पानी मिलते, शत्रु लोग बोले हमारे ले लो। कारण के प्राण में उसको चोट लगा नहीं, लड़े किसी से के साथ, वो मिलाप में चल रहे। तीसरा उन लोग आकर बोला उल्ले वो भी ले लो। अंत में शत्रु लोग सब आकर उससे बोला अरे तुम्हारे साथ हमारा मिलाप होना पड़ेगा, कारण तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, साथ है। वो है ऐसे जीवन से हम सीखते परमेश्वर के लोग कैसे चलना पड़ेगा। आमेन। प्रार्थना करेंगे। इसके बाद दूसरा एक सेवकाई भी है। सब पहले जय मसीह। नेपाली भाई सुनने वाले सब पहले बुझे होला, हिंदी तो आउँछ नेपाली में बोले मैंने हिंदी बोलने बुझ्दैन, त्यो कारणले म हिंदी में भने को होइन भने नेपालीको सेवकाई हुन्छ होला। नेपाली मण्डली अहिले समय सम्पर्क गरेको छैन, छ भने बताइदिन्छ, नेपालीमा पनि सेवकाई हुन्छ होला। हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, आज के ये दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो वचन हमने आप सुना है प्रभु, हमारा प्रार्थना ये है प्रभु, हमारे जीवन में वो मिलाप होना पड़ेगा प्रभु। इसके लिए आपने समय दिया है, हर परिवार को, हर कलीसिया को समय दिया है प्रभु। छोटी बात होगा, बड़े बात होगा, लेकिन सब बात में मिलाप होना पड़ेगा प्रभु, कि हमारे प्राण में जो जो चोट लगा हुआ है, आपके आपके अनुग्रह से उसको चंगाई मिल सके प्रभु। हमारे हमारे प्राण सुखा नहीं पड़ा, हमारा दिमाग दिमाग संसार के तरीका में नहीं प्रभु, हमारे दिमाग आपके स्वर्ग के ओर, आपके मार्ग के ओर, आपके चिंता और विचार के अनुसार चलने के लिए आपके आत्मा से हम सुनना पड़ेगा प्रभु। हम वजन वजन पढ़ते पढ़ते समय संसार के वो दिमाग विचार से नहीं, प्राण आपके आत्मा के विचार के अनुसार वजन पढ़ने के लिए हमें सिखाओ प्रभु, क्योंकि वो लिखित वचन मृत्यु लेकर आते, आत्मिक वचन जीवन लेकर आते प्रभु। आप जीवन लेकर आया, मृत्यु लेकर नहीं प्रभु, इसलिए मिलाप में, शांति में और आपकी पवित्र खोज कर चलने वाले परिवार, व्यक्ति और एक कलीसिया ये दिनों के बाद उठना पड़ेगा प्रभु। महामारी के बाद जब अनिकाल आते, वो कलीसिया खड़ा होकर और अनिकाल के बाद भी वो खड़ा ही रहेगा प्रभु। अनिकाल के आगे, महामारी के आगे वो व्यक्ति, वो परिवार, वो कलीसिया नहीं गिरेगा प्रभु, कारण प्राण में मजबूत है, आत्मा से सुनते हैं और शरीर परमेश्वर के आगे निर्दोष रखा हुआ है। वैसे लोग आप उठा रहे प्रभु, इसके लिए कलीसिया को समय दिया है, हमें ये समय इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, कमिट द होल चर्च इनटू द हैंड्स एंड आई ब्लेस देम इन योर नेम प्रभु, ब्लेस देम एंड कीप देम यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन।